हरे कृष्णा। आज गृह प्रवेश के अनुष्ठान के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बांधु के कुटुंब ने आज नए घर में प्रवेश करने का निश्चय किया है, तो ये एक उपयुक्त मौका है कि हम चर्चा करें कि गृह में हमें क्या करना चाहिए। प्रवेश तो करना है, लेकिन प्रवेश करने के बाद में क्या करना चाहिए? केवल प्रवेश करके अनुष्ठान करना, भक्तों का संग लाना, ये सच्चा प्रवेश है। जब भक्तों का संग गृह में हो जाता है, हरि नाम का उच्चारण हो जाता है, हरि कथा हो जाती है, तो वही सच्चा गृह प्रवेश है। तो आज बांदुर्गे कुटुंब बहुत भाग्यशाली है कि उनके निमंत्रण पर इतने सारे भक्तगण आए हैं, अपने चरण कमलों को यहाँ रख कर जा रहे हैं और यहाँ इतने उत्साह से हरि नाम ले रहे हैं। तो इस तरह से सबको बार बार गृह प्रवेश मनाने का एक प्रेरणा मिल रहा है। वैसे गृह में हम रहें या हम जंगल में रहें, हमारे जो असली स्वधर्म है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। दो तरह के स्वधर्म होते हैं, स्व मतलब स्वहम, अपने आप। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो वो स्वधर्म शारीरिक स्वधर्म होता है, अपने आश्रम और अपने वर्ण के हिसाब से कर्म करना। जैसे कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारे एक प्रकार के कर्तव्य होते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं तो अलग प्रकार के कर्तव्य, सन्यासी हैं तो अलग प्रकार के कर्तव्य। उसी प्रकार से कोई ब्राह्मण है तो उसके एक प्रकार के कार्य, क्षत्रिय है अलग, ऐसे। तो ये है शारीरिक स्वधर्म। लेकिन इससे परे और एक स्वधर्म है जो आत्मा से संबंधित है, और वो है भक्ति। क्योंकि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीव का असली स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, और दास का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, प्रभु की या मालिक की सेवा करना। तो इसलिए चाहे हमारा शरीर कैसा भी क्यों ना हो, हमारा शरीर ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, चाहे हम ब्रह्मचारी हों, गृहस्थी हों, वानप्रस्थी हों, सन्यासी हों, हमारा असली काम क्या है? हमारा असली काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी प्रार्थना की है, ना हम विप्रो न च नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। मैं ना तो ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ, न मैं शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं क्या हूँ? गोपी भर्तुः, भर्तुः मतलब प्रभु। तो गोपियों के जो प्रभु हैं, जो कि सारे ब्रह्मांड को आनंद प्रदान करते हैं, मैं उनके दासों के दासों का दास हूँ। गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को केवल श्री कृष्ण का भक्त नहीं मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का भक्त होना तो बहुत ऊंची चीज होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ये भी नहीं सोचते हैं कि वो भक्तों के दास हैं, ये भी बहुत ऊंची चीज है। तो वो क्या सोचते हैं? कि वो कृष्ण के दास के दास के दास हैं। तो ये हमारा असली स्वरूप है, ये है अपना आध्यात्मिक या असली स्वरूप, कि हम भगवान के भक्तों के दासों के दासों के दास। ये हमारी असली पहचान होनी चाहिए। जब हम सब भगवान श्री कृष्ण के दासों के दासों के दास हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम ब्रह्मचारी हों, गृहस्थी हों, क्या हों, कुछ फर्क नहीं। इसलिए इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। चाहे आप गृह में रह रहे हो अर्थात आप गृहस्थ हो, या चाहे आप वन में रहते हो अर्थात आप सन्यासी हो, कोई बात नहीं, सदा हरि बोले डाको। हरि का नाम पुकारते रहो, हरि के नाम का उच्चारण करते रहो। तो ये हमारा असली काम है, सबका काम है। हर परिस्थिति में हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में हमारे घर में और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारे परंपरा में एक महान आचार्य हुए, वो शुद्ध भक्त थे। उनके घर में भी उन्होंने ऐसा एक भक्ति का वातावरण निर्माण किया था कि वो कहते हैं अपनी किताब में कि जब मैं मेरे घर में लौट के आता हूँ मेरे कोर्ट से, क्योंकि उस समय वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, इतना बड़ा पद था उनका, और वो कहते थे कि कोर्ट से, अदालत से जब मैं लौट कर आता हूँ मेरे घर में, तो मुझे लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में आ गया हूँ। उनके 13 बच्चे थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13। कई बार हमारे गृहस्थ भक्त कभी कभी चिंता करते हैं, एक बच्चे को, दो बच्चों को कैसे संभालना, कैसे उनको भक्त बनाना, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने 13 ही बच्चों को भक्त बना दिया। और घर में जब वो लौट कर आते थे शाम को, तो गौरांग महाप्रभु की आरती चला करती थी, जो कि हम हर शाम को गाते हैं। और इस प्रकार से जब वो आते थे तो इतना सुंदर रम्य एक आध्यात्मिक वातावरण हुआ करता था कि वो कहते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताते हैं, हित्वात्म पातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। वो कहते हैं कि जो स्थान आत्मपातम है, आत्मपातम मतलब जहाँ आत्म तत्व के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं होती, आत्म साक्षात्कार या भगवत तत्व के बारे में कोई प्रगति नहीं हो रही हो, तो ऐसे स्थान को हित्वा हमें त्याग देना चाहिए। और ऐसा जो घर है वो अंधकूप हो जाता है। हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम। तो जिस घर में आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, वो क्या है? अंधकूप है। और प्रहलाद कहते हैं कि ऐसे गृह को, अंधकूप को हमें त्याग कर वृंदावन में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। लेकिन जब यही गृह, यही घर जब भक्तिमय बन जाता है, जब सारे परिवार के सदस्य मिलकर कृष्ण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया, ये घर अंधकूप नहीं रहेगा, एक कोई साधारण घर भी नहीं रहेगा, ये साक्षात गोलोक वृंदावन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? सदा हरि बोले ढाको। इसके लिए ये जरूरी है कि सदा हम श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहें। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जहां भी भगवान के नाम का उच्चारण हो, वो जगह गोलोक वृंदावन हो जाता है, चाहे वो मंदिर हो या चाहे वो घर हो। अगर घर में हरि नाम सदा उच्चारण होता रहे तो वो गोलोक वृंदावन है, और मंदिर में हरि नाम नहीं होता रहे, इंद्र तृप्ति हो जाए, तो वो फिर गोलोक वृंदावन नहीं होता है, मंदिर भी नहीं कहलाता। लेकिन जहां हरि नाम हो रहा हो वही मंदिर है, वही गोलोक वृंदावन। ये है हमारे वैष्णव आचार्यों के सिद्धांत, और इसलिए हमें हरि नाम के ऊपर निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें यह भक्ति मार्ग या हरि नाम का उच्चारण छोड़ना या त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ भजन में उपदेश देते हैं, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे। वो कहते हैं कि सुख में हो या दुख में हो, लेकिन हरि नाम छोड़ो नहीं। कभी कभी अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से नाम को भूल जाते हैं, और अगर कोई लोग बहुत दुखी हैं तो कहते हैं कि हमारे जीवन में इतना कष्ट है कि हम माला नहीं कर पाए, हम मंदिर नहीं आ पाए, बहुत दुख था हमारे जीवन में, बहुत कष्ट आया। अरे कष्ट है दुख है, इसीलिए तो करना चाहिए ज्यादा। जब आदमी बीमार होता है तो जब ज्यादा दवाई लेनी चाहिए। अगर बीमार व्यक्ति क्या है कि मैं इतना बीमार था कि मैंने दवाई नहीं ली, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, कैसे सुधर जाएगा। और अगर वो कहता है कि मैं इतना सुखी हूं कि मैंने हरि नाम नहीं लिया, तो ये भी मूर्खता है, क्योंकि सुख ज्यादा देर रहेगा नहीं, बहुत ही जल्द दुख आ जाएगा, दुख दरवाजे पे खड़ा है अंदर आने के लिए। तो इस प्रकार से सुख हो या दुख हो, हमें हरि का नाम भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में जो सुख की अवस्था में हरि का नाम लेता है उसके लिए दुख आता ही नहीं है। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। जो सुख में हरि भजे तो दुख कहां से होए। सभी लोग जब दुखी होते हैं तो सोचते हैं चलो भगवान के मंदिर में जाओ, लेकिन जब सुख आ जाता है, अपनी मांगे पूरी हो जाती हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुख की अवस्था में भी भगवान का नाम लेता है तो उसको दुख कहां से होगा। भगवान का नाम लेते लेते सदा वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता रहेगा। इसलिए हमें सदा भगवत नाम का शरण लेना चाहिए। आगे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, माया जाले बद्ध होइए अच्छा मीछे काज लोइए। वो कहते हैं कि माया के जाल में जीव बद्ध होकर फंसकर नाना प्रकार के कठिन संघर्ष करता है इस प्रकृति में, अनावश्यक बिना कोई वजह के बिना कोई कारण के कठिन से कठिन संघर्ष करने लगता है, और सोचता है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूं। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थक भारम उद्वहतो विमूढ़ां। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं संसार से डरता नहीं हूं, नहीं वो विजय पर दुरत्य वैतरण्यास्तवीर गायन महामृत मग्न चित्ता। कि मैं ये भयंकर भौतिक संसार से डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरा चित्त हमेशा आपके गायन कीर्तन में गुणगान में मग्न रहता है, इसलिए मेरे जीवन में कोई सुख नहीं, चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं। अगर दुख है तो केवल एक बात की, शोचे ततो विमुख चेतस। वो लोग जो भगवान से विमुख हैं, जिनकी चेतना विपरीत हो है भगवान से, क्यों विपरीत हो गई है, इंद्रियार्थ माया सुखाय। वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए माया सुख को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपसे विमुख हो गए हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मैं दुखी हूं। शोचे ततो भारम उद्वहतो विमूढ़ान। और ये क्षणिक माया सुख के लिए कितने भारी भारी वजन और जिम्मेदारियां जीवन में उठाते हैं, और सोचते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहां भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि माया जाल में बद्ध होकर कितना अनावश्यक जीव संघर्ष करता है। वास्तव में अगर धीरे से हल्के से उसने थोड़ा बहुत परिश्रम कर लिया तो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है, काफी है। एक बार एक साधु थे जो हिमालय में रहते थे, और उनको ऊपर नीचे जाना पड़ता था क्योंकि मंदिर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर था, और जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो उनको तकलीफ होता था ऊपर चढ़ने में आने में। तो एक बार वो तो श्री राम के भक्त थे, रामानंदी थे। तो पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उन्होंने सोचा कि मुझे अगर घोड़ा होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं घोड़े के ऊपर बैठकर ऊपर चले जाता, भगवान की सेवा करता, वापस मेरे आश्रम में नीचे आता। तो फिर उन्होंने राम मंदिर में जाके प्रार्थना कर दी, हे राम एक घोड़ा दिलाई दे राम, हे राम एक घोड़ा दिलाई दे राम। और अचानक उनके सामने एक आदमी आया, मेरे पास एक घोड़ा है, मैं आप साधु हैं, मैं आपको दान देना चाहता हूं। तो साधु सोचने लगे, अरे राम ने घोड़ा दिलाई दिया, अच्छा देखो हमने प्रार्थना किया कि हे राम घोड़ा दिलाई दे राम और घोड़ा आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो ठीक है, बड़े खुश हो गए साधु, फिर घोड़े के ऊपर बैठ गए, सोचा कि अभी आप ऊपर चलेंगे। तो घोड़े के ऊपर बैठे, एक दिन चले, अच्छे बड़े खुश हो गए, दूसरे दिन भी चले तो बहुत खुश हो, कितना आराम है। फिर तीसरे दिन क्या हो गया कि धीरे धीरे चलते चलते घोड़ा वहीं पर रुक गया, और जो भी को कुछ कहें वो आवाज़ करते थे लेकिन घोड़ा आगे चले नहीं। तो साधु नीचे उतर गए देखने के लिए कि क्या बात है, और उस समय साधु ने देखा कि ये घोड़ा है वास्तव में घोड़ा नहीं है, घोड़ी है, और घोड़ी गर्भवती थी, और उसी क्षण उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। और क्योंकि बच्चा वहां पर पड़ा था तो घोड़ी उस बच्चे को छोड़ के आगे नहीं जाना चाहती थी। कौन ऐसी माँ है किसी भी योनि में जो अपने बच्चे को यूं ही छोड़कर चले जा सकती है। तो घोड़ी वहीं पर थी तो घोड़ी आगे नहीं जा रही थी। तो साधु बड़े दुविधा में पड़ गए, अब क्या किया जाए, कैसे मामले को निपटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा, हाँ घोड़ी को आगे हिलाने के लिए एक ही रास्ता है, मैं इस बच्चे को आगे ले जाऊंगा, बच्चे को पकड़ कर अगर मैं ले जाऊंगा तो वो पीछे पीछे आएगा। तो बच्चे को उठाया, घोड़ी के बच्चे को, और आगे आगे अपने गोदी में लेकर आगे चले गए। और जैसे कि अनुमान लगाया था साधु ने, ठीक उसी प्रकार से वो घोड़ी भी पीछे पीछे चलती आ गई। साधु बड़े खुश हो गए कि वाह मैं मेरे कार्य में सफल हो गया, घोड़ी को हिलाने में मैं सफल हो गया, अभी घोड़ी चल रही है जो कि पहले नहीं चल रही थी। फिर आगे आगे चलते चलते जब घोड़े के बच्चे का वजन भारी होते जा रहा था पहाड़ ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो साधु ने अचानक एक विचार आया मन में कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी हे राम एक घोड़ा दिलाए दे राम कि ताकि मैं घोड़े के ऊपर बैठकर ऊपर चले जाऊं, लेकिन अभी क्या हो गया, घोड़ा मेरे ऊपर है और वो मुझे ऊपर लेके चले जा रहा है, ये क्या हो गया, बड़ी अजीब परिस्थिति हो गई। तो ये है संसार का नियम, भारम उद्वहतो विमूढ़ान। हम सोचते हैं कि हम ये जिम्मेदारी उठाएंगे वो जिम्मेदारी उठाएंगे, इससे हमारा ये सफल होगा वो सफल होगा, इतना आराम मिलेगा, बस एक इतना पैसा आ जाए तो और आराम हो जाएगा। और फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि जिन वस्तुओं हम जो वस्तु हमें आनंद देने के लिए हमने लिए थे वही वस्तु हमारे लिए बोझ बन जाते हैं और उनको फिर हमें पकड़ के चलना पड़ता है। अब हम इतना कुछ लेते हैं, फिर इसके लिए बिजली का बिल, उसके लिए ये, उसके लिए वो भाड़ा, इसके लिए ये पैसा, फिर उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, कितना भारी बन जाता है वजन। तो इस प्रकार से हम बिना कारण के, व्यर्थ के, फिजूल के इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, क्यों, इंद्रियार्थ माया सुखाय, और ये छोटे से सुख के लिए चपल सुख लब लागिरे, हम ये क्षणिक सुख के लिए भारी भारी वजन कंधे पे उठाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर आए हमें बोले कि क्यों इतना अनावश्यक भारी भारी वजन उठाते हो, आराम से जियो, भगवान का भजन करो, थोड़ा कुछ दो टाइम खाओ और सुखी से जियो। नहीं, एक बार एक महिला थी, बूढ़ी महिला, और ऐसा हुआ कि वो एक कंधे पे बहुत भारी वजन लेके जा रही थी। तो एक आदमी एक घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था और उसके गाड़ी के चक्का जो है वो मिट्टी में अटक गया। तो ये जो महिला है उसने मदद किया उस व्यक्ति को चक्का निकालने के लिए। जब चक्का निकाल दिया तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत धन था। तो उसने पूछा कि तुमने मेरी मदद की है तो अब बताओ कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो महिला ने क्या कहा कि ये जो भारी वजन मैं दाहिने कंधे पर पकड़ के जा रही हूँ ये बहुत भारी हो रहा है, तो ये उठाकर मेरे बाएं कंधे पर रख दीजिए। देखिए ये महिला चाहे तो कुछ भी मांग सकती थी, मुझे पैसा दीजिए ताकि जीवन में कभी भी मुझे वजन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन उसने क्या मांगा, बाएं कंधे से दाएं कंधे। जब दाएं कंधा दर्द करने लगेगा दाएं कंधे से बाया कंधे, वजन छोड़ना नहीं चाहती थी। तो ठीक उसी प्रकार से ये संसार में हम वजन छोड़ना नहीं चाहते, इधर से उधर वजन, उधर से इधर, यहां थक गए तो उधर, उधर थक गए तो फिर से इधर, यही है संसार परिश्रम। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माया जाले बद्ध होई अच्छो मीछे काज लिए, काज मतलब काम, अच्छो मीछे मतलब खामखा बिना कोई काम के, बिना कोई प्रयोजन के ऐसे काम एक के ऊपर एक वजन ले लिए हैं और फिर इतना कष्ट। इसलिए एखनो चेतना पे राधा माधव नाम बोल रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम से कम अभी तो राधा माधव का नाम ले लो, अभी इतने भारी भारी वजन उठाते हो तो थोड़ा वजन और उठाओ, हरि नाम ले लो और ये तुम्हें आनंद देगा। वास्तव में किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो वास्तव में हमारा बोझ कितना हल्का हो जाएगा, और ये सब भक्तों का अनुभव है। लेकिन जब भगवान का नाम भूल जाते हैं तो फिर हमारा बोझ बहुत भारी लगने लगता है, जीवन में दुख बढ़ जाते हैं। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीवन होइ लो शेष न भजिले ऋषिकेश, कि जीवन शून्य है ऋषिकेश या श्री कृष्ण के भजन के बिना, ये सत्य है। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, उनकी भक्ति नहीं करता, वो उसका जीवन व्यर्थ गया है। माता देवहूति श्रीमद् भागवत में बताते हैं नेहयत कर्म धर्माय न वैराग्य उपकल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन नपि मृतो हि सह। वो कहते हैं कि जब हम जीवन में केवल कर्म करते हैं लेकिन धार्मिक क्रियाएं कोई नहीं करते, और या फिर हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं लेकिन हमारे जीवन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती है, या तो फिर हम वैरागी बन जाते हैं लेकिन तीर्थपद सेवाए भगवान जिनका नाम तीर्थपद है, जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ स्थान निवास करते हैं, वैराग्य की प्राप्ति के बाद भी भगवान की सेवा की भावना अगर जागृत नहीं होती हमारे हृदय में, जीवन नपी मृतो हि सह, जीते जी हम मरे हुए आदमी के बराबर हैं, सांस ले रहे हैं लेकिन सांस लेना कैसे, जैसे लोहार का जो भट्टिक होता है जिसमें वो गर्म करके लोहे को गर्म करके मारता है।
लाखों रुपए खो दिए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमने हरि नाम नहीं लिया, हमने भगवान की सेवा नहीं की, यूं ही हमारे मूल्यवान मनुष्य जीवन व्यर्थ गवाया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है वो मरे हुए आदमी के समान है, और अगर कोई भक्त हो और वो भी जाप करना बंद कर देता है, कीर्तन करना बंद करता है, कृष्ण की सेवा करना बंद करता है, तो उसका भी जीवन अंत के समान समझना चाहिए कि उसका जीवन अंत हो गया, शेष हो गया। और भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद उपदेश एक बार नाम रसे मातरे, वो सबसे निवेदन करते हैं एक बार तो कम से कम नाम का रस का आस्वादन कीजिए, कितना मीठा है भगवान का नाम, इसको चख कर तो देखिए कितना अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति को भगवान के नाम का स्वाद मिल गया है भला वो कैसे किसी संसार के स्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस वक्त अगर हमें हरि नाम का स्वाद नहीं मिल रहा है तो केवल इसी वजह से कि हम अभी आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हैं। जब किसी व्यक्ति को पीलिया की बीमारी हो जाती है जॉन्डिस, तो कोई मीठी वस्तु को चखने से उसको मिठास नहीं लगती, क्योंकि उसके जिह्वे पर मीठा स्वाद वो चख नहीं पाता है बीमारी की वजह से। लेकिन पीलिया के लिए उपाय या औषध एक ही है और वो है गन्ने का रस, जो कि मीठा होता है। गन्ने का रस जब पीलिया का मरीज पीता है तो उसे वो मीठा नहीं लगता बल्कि कड़वा लगता है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीता रहता है वैसे वैसे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और वैसे वैसे उसके जिह्वा में स्वाद फिर से लौटने लगता है और फिर गन्ने का रस उसे पुनः मीठा लगने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि गन्ने का रस बीच में कड़वा हो गया। गन्ने का रस कड़वा नहीं हुआ, गन्ने का रस तो मीठे का मीठा ही था, पहले भी था, बीच में भी था, अंत में भी था। लेकिन बीमारी की वजह से उस व्यक्ति को ये मीठा रस कड़वा लगा। ठीक उसी तरह से हरि नाम हमेशा मीठा है, मधुर है, लेकिन हमारे अंदर बीमारी है इसलिए इसके मिठास को हम चख नहीं सकते हैं और हमें लगता है कि कड़वा है, कितना बोझ है। संसार का बोझ भारी नहीं लगता लेकिन हरि नाम का बोझ भारी लगता है। जो माला हम गले में टंगा के लग जाते हैं उसको 10 किलो का वजन लगता है, इतना भारी वजन ये माला, 16 माला रोज करने, कितना भारी वजन, और वो भी ध्यान से करना, वो भी सोना नहीं, और मंदिर में आते तो और भी परेशानी जगाने वाले बहुत रहते हैं, कितना भारी वजन। लेकिन केवल लेते रहे नाम हरि नाम को बार बार, तो जो नाम अभी कड़वा लग रहा है धीरे धीरे चल के बहुत मीठा लगेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चख के तो देखो, एक बार चखोगे तो भूलोगे नहीं, फिर इसके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे हमने सुना है, अनुभव तो नहीं है, गलत मत समझिए, लेकिन जब व्यक्ति शराब पीना शुरू करते हैं तो पहले पहले उनको अच्छा नहीं लगता, शराब का स्वाद अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे वो संग में आते हैं और शराबी दोस्त बोलने लगते हैं कि अरे इतना अच्छा है, पियो पियो, पीठ पे थोड़ा थपथपा डालते हैं, तब वो नाक बंद करके किसी न किसी तरह से वो शराब पी लेता है और धीरे 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 से उसको उसका झटका बैठ जाता है। फिर लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा है, अभी बार बार पीना चाहिए। हालांकि जो अच्छा व्यक्ति वो समझता है कि शराब कितनी गंदी चीज है, स्वाद भी नहीं, कुछ नहीं, गंध इतना है बुरा, इतना नुकसान होता है इससे, लेकिन इस व्यक्ति को उसका चस्का बैठ जाता है, इसलिए उसको लगता है वाह अच्छा स्वाद आ गया, फिर बार बार लेते हैं। एक बार उसको स्वाद लग गया तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो करिए है चीज है, ये विकृत प्रतिबिंब है। भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो पहले पहले कड़वा लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भक्त प्रेरणा देते हैं प्रभु माता जी कीजिए, जब कीजिए देखो कितना अच्छा लगेगा। तो धीरे 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 से भक्तों के प्रोत्साहन से, बोलने से, डांटने से, निवेदन करने से, पैर पड़ने से, किसी न किसी तरह से जब भक्त नाम लेते रहता है तो धीरे धीरे से इसका स्वाद आने लगता है, हाँ कितना अच्छा है। और फिर ये स्वाद एक बार आ जाता है फिर ये छूटता नहीं है। इसलिए ये स्वाद के लिए हम इतने जन्मों से हम परेशान हैं, हम आतुर हैं कि कब ये स्वाद मिलेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन क्या है? आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आनंद अम्बुधि वर्धनम, अम्बुधि मतलब क्या है? सागर। वर्धनम जो आनंद के सागर की वृद्धि करता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, और हर पद में हर कदम में प्रतिपदम पूर्णात आस्वादनम पूर्णामृतास्वादनम। जिस हर कदम में भगवान का नाम लेते लेते ये अमृत के समान लगता है और इसका मीठा स्वाद बढ़ने लगता है, मिठास तो बढ़ता है साथ साथ आनंद भी बढ़ता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम विजय हो उस श्री कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की, जिसको करने से हमें आनंद के सागर में हम डूब जाते हैं और ये आनंद की वृद्धि होते रहती है और हर पद हम ये अमृतमय नाम का स्वाद लेते रहते हैं। और ये चित्त का मार्जन करता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापणम। जो ये भौतिक संसार में त्रिविध ताप है, जो संकट है, कष्ट है हृदय में, उनका निवारण करता है। अग्नि के समान हमारे हृदय में ये कष्ट, संकट, ये नाना प्रकार के अनर्थ जल रहे हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका शमन करती है, इनका दमन करती है हरिनाम। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधौ जीवनम। पूर्ण पूर्णिमा के चांद के समान वो अपने शुद्ध शीतल रोशनी को फैलाती है हमारे जीवन में, और वास्तव में सौभाग्य का उदय हमारे जीवन में होता है। जब से हम कृष्ण भक्त बनते हैं तो हमारे जीवन में भाग्य खुल जाता है। जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनते तब तक हम दुर्भाग्यशाली हैं। जिस क्षण से हम कृष्ण भक्त बनते हैं सौभाग्य हमारा खुल जाता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उपदेश देते हैं कि हमें हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। तो चाहे हम घर में रहें, चाहे हम जंगल में रहें, चाहे हम मंदिर में रहें, लेकिन अगर हम हरि नाम ले रहे हो तो हमारा घर, हमारा मंदिर, हमारा जंगल वो गोलोक वृंदावन होगा। अगर हम हरि नाम नहीं ले रहे हैं, हमारा मंदिर, हमारा घर, हमारा जंगल वो क्या होगा? अंधकूप होगा। इसलिए गृह प्रवेश भी आज बांधव के कुटुंब में बड़े अच्छे ढंग से मनाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्तों को निमंत्रण दिया है, भक्तों ने आकर यहाँ वैष्णव होम किया है, शुद्धता फैल गई, शुभ सारे लक्षण फैल गए, साथ साथ भक्तों ने कीर्तन किया, हरि कथा हुई, अभी प्रसाद का वितरण होगा। तो इस प्रकार से ये असली गृह प्रवेश है। इसलिए हमें सब यहाँ प्रार्थना करनी होगी कि बांधव के कुटुंब के सारे सदस्य कृष्ण भक्ति के मार्ग में अच्छे से, अच्छी तरह से, तेजी से प्रगति करते रहे। श्री कृष्ण भावना, श्री कृष्ण प्रेम की चंद्रिका, पूर्णिमा की चंद्रिका उनके हृदय में सदा उदित रहे और वो इस दिव्य आनंद के सागर में डूब जाएं और अपने मनुष्य जीवन को